15 जनवरी दिन भर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदर। भारत और इसराइल के बीच 9 समझौतों पर दस्तखत। मोदी ने हिब्रू में नेतन्याहू का किया स्वागत।
ये दीदी हयाकर बरुखिम बरुखिम हवायम ले होत।
जस्टिस लोया की मृत्यु की जांच की मांग फिर जोर शोर से उठी।
हम ये नहीं कह सकते कि उसी को किसी ने मार दिया है या नहीं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो सर्कमस्टेंसेस है उससे हमें लगता है कि ये एक अननेचुरल डेथ है।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के बीच आज लंबी बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने रक्षा और चरमपंथ पर रोक लगाने समेत कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इसराइल की रक्षा कंपनियों को भारत आने का न्योता दिया है। दोनों देशों के बीच कृषि, साइबर सिक्योरिटी, तेल गैस और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी सहयोग पर सहमति बनी है। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि भारतीय सेना की कार्रवाई में उसके 4 जवानों की मौत हो गई। पाकिस्तान के मुताबिक इस दौरान भारत के भी 3 सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन भारत ने इस दावे को गलत बताया है। 2 दिन पहले पाकिस्तान की फायरिंग में 1 भारतीय सैनिक की मौत हो गई थी। भारतीय सेना ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से घुसपैठ की कोशिश करते 5 संदिग्ध चरमपंथी उसकी कार्रवाई में मारे गए हैं। उत्तर पूर्व सीरिया में नए सैन्य बल गठित करने के अमरीकी प्रयासों की कई देशों ने आलोचना की है। तुर्की के राष्ट्रपति रचेप तैयब अर्दोगान ने इसे टेरर फोर्स बताया है और कहा है कि वो इसे कुचल देंगे। इस प्रस्तावित सैन्य बल में अमरीका समर्थित विद्रोही होंगे जिन पर सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। सीरिया ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है। वहीं रूस ने इसके खतरों को लेकर दुनिया को आगाह किया है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा, इस क्षेत्र का नियंत्रण अमेरिका समर्थित समूहों के पास होगा। ये ऐलान बेहद गंभीर मुद्दा है। इस बल में 30,000 लोगों के होने की बात की जा रही है। चिंता इस बात की है कि इससे सीरिया के विभाजन का रास्ता तैयार किया जा रहा है। ये थे रूसी विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन के पूर्वी तट पर रविवार को ईरान से आ रहे टैंकर के पलटने से लगी आग बुझा ली गई है, लेकिन इस टैंकर से रिसे तेल से समुद्री जीवन को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इस जहाज पर हजारों टन तेल लदा था। 120 वर्ग किलोमीटर दायरे में तेल की चादर देखी जा सकती है। चीन के सरकारी टीवी के मुताबिक 2 जहाज पानी पर ऐसे रसायन का छिड़काव कर रहे हैं जिनसे तेल घुल जाता है। म्यांमार और बांग्लादेश के बीच रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने को लेकर बातचीत जारी है। 2 महीने पहले दोनों देशों के बीच इनकी वापसी को लेकर समझौता हुआ था। बीते साल म्यांमार की सेना की कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश आ गए थे। बांग्लादेश की एजेंसी BRAC के डायरेक्टर मोहम्मद मूसा ने शरणार्थियों से हो रही दिक्कतों की जानकारी देते हुए कहा, पहली दिक्कत जीवन यापन की है। स्थानीय लोगों को शरणार्थियों से नौकरी के लिए मुकाबला करना पड़ रहा है। दूसरा, वहाँ चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी हैं। कई स्कूल शरणार्थी कैंप बन गए हैं जिससे स्थानीय लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये थे मोहम्मद मूसा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान की राजधानी बगदाद में हुए 2 आत्मघाती धमाकों में 35 लोगों की मौत हो गई। इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन धमाकों में कम से कम 60 अन्य लोग घायल हुए हैं। 3 दिनों के दौरान ये बगदाद में 2रा आत्मघाती धमाका है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। छह दिनों के लिए भारत के दौरे पर आए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गहन बातचीत की है और दोनों देशों के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया, जहां दोनों देश इस यात्रा और बढ़ते संबंधों को ऐतिहासिक बता रहे हैं। वहीं भारत में कुछ लोगों ने सोमवार को भी इस यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल भारत संबंधों की तारीफ करते हुए इसकी तुलना स्वर्ग में तय हुई शादी से की है और प्रधानमंत्री मोदी को मेहमान नवाजी और मित्रता के लिए धन्यवाद भी दिया है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कुछ घंटे चली इस द्विपक्षीय वार्ता से पहले नेतन्याहू को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर वे महात्मा गांधी की समाधि पर भी गए। सभी की नजरें इसके बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थीं, क्योंकि दोनों देशों के बीच होने वाले समझौतों पर एक लंबे समय से कयास लग रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने शुरुआत में माइक संभाला और हिब्रू भाषा में नेतन्याहू का स्वागत करते हुए कहा कि दोस्ती के इस सफर में आपकी यात्रा का खासा इंतजार रहा है।
ये दीदी हायाकार बरुखिम बरुखिम हवायम ले होत माय गुड फ्रेंड योर विजिट प्राइम मिनिस्टर इज अ लॉन्ग एंटिसिपेटेड मोमेंट।
जवाब में इसराइल के प्रधानमंत्री ने भी भारत और नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के अलावा हजारों वर्षों के इतिहास का भी हवाला दे डाला।
Our peoples have had thousands of years of history. India and Israel are two of the most ancient civilizations on earth. And yet, it is an amazing fact that until you visited Israel, no leader of India in 3,000 years has visited Israel.
बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे थे कि हम दो देशों का 3000 साल पुराना प्राचीन इतिहास है और इसके बावजूद किसी भी भारतीय प्रमुख ने आपसे पहले तक इसराइल का दौरा नहीं किया था। आपका वो दौरा वाकई में सराहनीय रहा। बहरहाल, इन दोनों के आपस में एक दूसरे की पीठ थपथपाने के पहले इनकी मौजूदगी में इनकी सरकारों के प्रमुख सचिवों के बीच कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच पहली बार तेल और गैस क्षेत्र में निवेश पर सहमति बनी है और इसराइल रिन्यूएबल एनर्जी में भारतीय कंपनियों को तकनीक देने के लिए राजी है। उड्डयन क्षेत्र में भी कयास लग रहे थे समझौते पर, इस पर सोमवार को हस्ताक्षर हो गए हैं। इसराइल विश्व में एक लंबे समय से अपनी साइबर सिक्योरिटी प्रणालियों के लिए खासा मशहूर रहा है और इस तकनीक पर करार भारत की नजर से एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। अंतरिक्ष शोध और औद्योगिक रिसर्च में भी दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं। भारतीय पीएम ने इस बात पर भी जोर दिया है कि चर्चा दूसरे मामलों पर हुई, जो कि दर्शाता है कि दोनों देशों में आपसी सहयोग बढ़ाने की चाहत है।
Our discussions were wide ranging and intensive. They were marked by the desire to do more.
वैसे जिस समय ये बैठक चल रही थी, उसी समय थोड़ी ही दूर पर इसराइली प्रधानमंत्री को अपने मुल्क वापस लौटने के नारे भी लग रहे थे।
Go back, go back, go back. खुदी नेतन्याहू, go back, go back, go back.
लेफ्ट पार्टियों ने इस विरोध प्रदर्शन को आयोजित किया था और सीपीआई नेता डी राजा का कहना था कि वे फलस्तीन पर इसराइली नीतियों का पुरजोर विरोध करते रहेंगे और भारत के आम नागरिक भी यही चाहते हैं।
पीपल ऑफ इंडिया डू नॉट अप्रूव द पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इसराइल। Israel is in illegal occupation of Palestinian territories.
सोमवार तो नेतन्याहू की यात्रा का दूसरा ही दिन था। जितने समझौते पहली बड़ी बैठक में हुए, उतनी की उम्मीद पहले से रही है। इंतजार इस बात का रहेगा कि 15 वर्षों बाद हो रही किसी इसराइली पीएम की यात्रा से और क्या क्या निकल कर आता है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
थोड़ी देर पहले मैंने यरूशलम फोन कर वहां गए बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद से संपर्क किया और पूछा कि इसराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू की इस यात्रा को किस तरह से लिया जा रहा है।
देखिए, यहाँ पर तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है इस दौरे से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं, क्योंकि हाल में भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र में यरूशलम को लेके जो इसराइल के खिलाफ वोट दिया और एक बड़ा जो डिफेंस का रक्षा का सौदा था वो कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग बहुत नाराज हैं। कुछ ये पूछ रहे हैं कि मिस्टर नेतन्याहू जा ही क्यों रहे हैं जब इस तरह के भारत ने झटके दिए हैं इसराइल को। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि दोनों नेताओं के, मिस्टर मोदी और मिस्टर नेतन्याहू के बीच जो पर्सनल केमिस्ट्री है बहुत स्ट्रांग है, तो शायद मुमकिन है कि इस केमिस्ट्री का असर रिश्ते में भी देखने को मिले और रिश्ता थोड़ा और मजबूत हो। और अभी लोग कुछ कह रहे हैं कि रोमांस रिश्ते में बाकी है, रोमांस से अब ऊपर जाना चाहिए, रिश्ते को और मजबूती लानी चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच जो मिडिल ईस्ट को लेके जो इख्तलाफ है वो दूर हो सके।
ये तो रही लोगों की बात, अखबारों में मीडिया में इसको किस तरह से लिया जा रहा है, वहाँ अखबारों में चर्चा है इस यात्रा की?
हाँ, चर्चा है। जैसे कि भी मैंने एक अखबार देखा, राइट विंग अखबार माना जाता है यहाँ का, उसमें तीन पन्नों में इसको कवरेज मिली है। मिस्टर मोदी को फ्रंट पेज में मिस्टर नेतन्याहू के साथ हाथ मिलाते हुए देखा गया एक तस्वीर में, दूसरी अंदर में दो पन्नों में उसकी पूरी तफसील है। दिल्ली में वहाँ उनका कोई कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसने बड़ी रिपोर्ट भेजी है। तो राइट विंग का जो प्रेस है वो इस दौरे को बहुत डिटेल में कवर कर रहा है, लेकिन जो लेफ्ट विंग, यहाँ दो हिस्सों में बटा हुआ है, लेफ्ट विंग जो प्रेस है वो बहुत ज्यादा इसको कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ जो ऐसे लेफ्ट विंग जर्नलिस्टों से मैंने बातें की तो उनसे यही लगा कि जो रिश्ता पहले था वही रहेगा, मिस्टर नेतन्याहू के जाने से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए कवरेज जो है ठीक ही है लेफ्ट विंग के प्रेस में।
अच्छा जुबैद, ये बताइए आपको वहाँ किस तरह से देखा जा रहा है संभावनाएं, वो लोग देखते हैं भारत इसराइल संबंधों में या उनके रिजर्वेशन है?
देखिए, लोग तो ये कह रहे हैं कि रिश्ते जो हैं वो मजबूत हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत होने की भी संभावना है। खासतौर से जो इसराइल जो ऑफर कर सकता है इंडिया को, वो टेक्नोलॉजी में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो भारत को चाहिए, डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं वो भारत को चाहिए, फिर व्यापार के जो एग्रीकल्चर एरिया उसमें भी मदद चाहिए भारत को। तो इसराइल बहुत कुछ दे सकता है भारत को, लेकिन यहाँ के लोग खुद ही कह रहे हैं कि इसराइली व्यापारी जो भारत के बाजार को समझ नहीं पाए ठीक से, वहाँ की मानसिकता जो है नहीं समझ पाए कि आपको टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चाहिए लेकिन सस्ते दाम में, वो ये लोग अब इनके समझ में आ रहे हैं। और कुछ व्यापारी वहाँ पर नाकाम हुए थे, अब दोबारा वहाँ जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि 2018 से एक नया मोड़ रिश्ते में आ सकता है और व्यापारिक जो संबंध है वो और भी मजबूत हो सकते हैं।
ये थे यरूशलम से बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
सुप्रीम कोर्ट के चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जस्टिस लोया के बेटे अनुज ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने पिता की मौत को लेकर कोई संदेह नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से बोलने उतरी वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह का कहना है कि ये मामला किसी एक परिवार से जुड़ा नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मौत के मामले में याचिका दायर करने वाले कांग्रेसी नेता तहसीन पूनावाला भी इसे एक व्यक्ति की मौत के रूप में नहीं देखने की बात कहते हैं। दोनों से बात की बीबीसी संवाददाता अभिमन्यु कुमार साहा ने।
बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए जज लोया के मृत्यु के बारे में। हम ये नहीं कह सकते कि उसी को किसी ने मार दिया है या नहीं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो सर्कमस्टेंसेस है उससे हमें लगता है कि ये एक अननेचुरल डेथ है।
जस्टिस लोया के बेटे अनुज ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने अपने पिता की मौत को नेचुरल डेथ बताया था। उन्होंने किसी भी तरह की शंका से इनकार किया था। क्या आपको नहीं लगता कि ये विरोधाभास की स्थिति है?
है, लेकिन इसी कारण से ये इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा नेसेसरी हो गया है। बहन कहती है कि मेरे भाई की डेथ नेचुरल डेथ नहीं है, और एक 20 साल का उसी का बेटा कहता है कि नहीं 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 मुझे कुछ डर नहीं है। और आपने अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी, आपने ये जो देखा कि वो उसके इर्द गिर्द कितने सारे लोग थे, उस व्यक्ति को कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस तो थी नहीं, तो ये मुझे लगता है मामला और गंभीर हो गया है।
लेकिन उनके परिवार वाले अब किसी भी तरह की जांच नहीं चाहते हैं।
देखिए, अब परिवार को एक तरफ छोड़ दीजिए, ये जो मामला है ना, ये परिवार का मामला नहीं है। मेरा मानना है कि जुडिशरी का अपना धर्म था, अपना फर्ज था कि हमारे अपने एक जज की जो मृत्यु अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में हुई है, वो भी एक बहुत ही सेंसिटिव केस में, उनको अपने आप इंक्वायरी करनी चाहिए। आप और मेरी बात भूल जाइए।
इंदिरा जयसिंह का मानना है कि मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला का कहना है कि इंदिरा जयसिंह सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा,
इंदिरा जयसिंह जी ने झूठ कहा है। सबसे पहली बात तो ये मैटर बॉम्बे हाईकोर्ट में अब तक आया ही नहीं है। 23 जनवरी को लिस्ट होगा, आज तक लिस्ट ही नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका करीबन जनवरी की 4 तारीख को दाखिल किया गया था, जबकि मेरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को दाखिल की गई।
जस्टिस लोया के परिवार ने मौत पर किसी भी शंका से इनकार किया है।
देखिए, सबसे पहले इनके साथ क्या हुआ है, मैं उस पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो बड़े ट्रांसपेरेंटली देश के सामने आ जाए। हमारे देश में एक जज की मृत्यु को लेकर काफी स्पेक्युलेशन चल रहा है। जो कुछ भी ये स्पेक्युलेशन है ये साफ हो जाए, ये मैं चाहता हूँ, और उसी लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ।
इंदिरा जयसिंह और तहसीन पूनावाला से बात कर रहे थे अभिमन्यु कुमार साहा। ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए 5 घुसपैठ कर रहे चरमपंथियों को मार दिया है। पूरे विवरण के साथ श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
सोमवार तड़के नियंत्रण रेखा के उड़ी सेक्टर के दंजोला में सेना और पुलिस ने भारी हथियारों से लैस 5 चरमपंथियों को मारने का दावा करते हुए बताया है कि ये चरमपंथी कश्मीर में दाखिल हो चुके थे। सेना का कहना था कि मुस्तैद सैनिकों ने चरमपंथियों के उन सभी मंसूबों को नाकाम बना दिया जब चरमपंथियों को सेना ने दलोजौन गाँव के करीब में देखा, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के अध्यक्ष SP वैद ने इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि मारे गए चरमपंथी जैश मोहम्मद का एक फिदायीन दस्ता था जो कश्मीर में किसी बड़े फिदायीन हमले को अंजाम देने का मंसूबा रखते थे। सेना ने दावा करते हुए बताया है कि मारे गए चरमपंथियों से भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद किया गया है। ब्रिगेडियर YS अहलावत।
इन्फिल्ट्रेशन बेट वॉज मेड ऑन दी 14-15 जनवरी नाइट अलोंग दी रिवर झेलम।
ब्रिगेडियर अहलावत बता रहे थे कि 14 और 15 की रात को चरमपंथियों ने घुसपैठ की थी और मुस्तैद जवानों ने जूं ही घुसपैठियों की गतिविधियों को देखा तो फायरिंग का तबादला शुरू हुआ, जिसमें अभी तक 5 घुसपैठी मारे गए हैं। गौरतलब है कि हालिया दिनों में जैश मोहम्मद के चरमपंथियों ने कश्मीर के पुलवामा जिले में CRPF के एक कैंप पर फिदायीन हमला किया था, जिस हमले में CRPF के 5 जवान मारे गए थे, जबकि 3 फिदायीन चरमपंथी भी उस हमले में मारे गए थे। पुलवामा में फिदायीन हमले से पहले जैश ने पुलवामा और श्रीनगर में एयरपोर्ट के करीब BSF के एक कैंप पर भी फिदायीन हमला किया था। हालिया महीनों में कश्मीर में जैश के कई बड़े चरमपंथी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। उधर पाकिस्तानी मीडिया ने ISPR के हवाले से बताया है कि पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना की गोलीबारी से पाकिस्तानी सेना के 4 जवान मारे गए हैं, जबकि भारतीय मीडिया में सेना के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारतीय सेना की गोलीबारी में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने ISPR के हवाले से बताया है कि पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना के 3 जवान मारे गए हैं, जबकि कई सैनिक घायल हो गए हैं। गौरतलब है कि दोनों ही देश भारत और पाकिस्तान सीमा पर एक दूसरे के खिलाफ युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
उधर केंद्रीय बगदाद में हुए दोहरे आत्मघाती बम हमले में 35 लोग मारे गए हैं और 12 अन्य घायल हो गए हैं। ये हमला बहुत ही व्यस्त इलाके तायरान के पास हुआ, जहां काम की तलाश में रोज बहुत से मजदूर जमा होते हैं। BBC संवाददाताओं का भेजा विवरण सुनिए सरप्रिया सांगवान से।
इराक लगातार चरमपंथी हमलों की चपेट में बना हुआ है। इराक की राजधानी बगदाद में आज एक के बाद एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 35 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए। इराक के गृह मंत्री ने बताया कि हमला 2 लोगों ने किया जिन्होंने बारूद से भरी आत्मघाती जैकेट पहनी हुई थी। ये हमला तेहरान स्क्वायर में हुआ, जो शहर के बीचों बीच एक जगह है जहां रोज बड़ी संख्या में मजदूर काम ढूंढने के लिए आते हैं। एक चश्मदीद ने हमले की जगह से ही BBC को हमले का आंखों देखा हाल बताया।
सात बजे के करीब हम लोग यहाँ खड़े थे। एक आदमी बस के पास खड़ा था जब तेज धमाका हुआ। हमला करने वाला बस से उतर रहा था, आग लग गई और लोग गिर पड़े, कुछ को बचा लिया गया। हमारे गरीब लोग मारे गए हैं, एक तो बिल्कुल यहीं मरा मेरे सामने। कई मजदूरों की भी मौत हुई और कई लोगों को चोटें आई हैं। इस धमाके से पहले वहाँ झंडे के पास एक तेज धमाका हुआ था। हम पहले के धमाके के बाद भाग ही रहे थे, तभी दूसरा धमाका हो गया।
एक के बाद एक धमाका इस तरह किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए। शनिवार को भी शहर के दक्षिण इलाके में एक आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस्लामिक स्टेट ने 2014 में इराक के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था और तब से ही बगदाद लगातार हमले झेल रहा है। हालांकि इन हमलों की गति थोड़ी कम हुई है क्योंकि इराक सरकार ने पिछले महीने ही घोषणा की थी कि उसने सभी इलाकों पर दोबारा अधिकार ले लिया है। इसकी वजह से इस्लामिक स्टेट का बगदाद से ऑपरेट करना मुश्किल हो गया है, लेकिन ये हमले हो रहे हैं और मई में चुनावों की घोषणा के बाद से हो रहे हैं। जुलाई 2016 में भी इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती हमले में बगदाद के करेड़ा शहर में 300 लोग मारे गए थे। इराक के इतिहास में सबसे घातक हमला था जिसमें एक बम धमाके से इतने लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए।
आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपके पत्रों का।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, परिचय करवा रहा हूँ अपनी एक सहयोगी का, जिनकी आवाज़ आपने सुनी है, खेल की खबरें आपको सुनाती रहती हैं, लेकिन आज पहली बार चिट्ठियाँ लेके हाजिर हैं। नाम बताइए दी अपना।
मैं, आपने खेल की बात की तो मेरे ख्याल से श्रोताओं ने खुद गेस कर लिया,
अंदाजा लगा लिया होगा। बिल्कुल, ये है
सूर्यांशी पांडे।
सूर्यांशी पांडे जी, सूर्यांशी स्वागत है आपका आपकी राय में। तो जो ईमेल आपके पास हैं और चिट्ठियां भी मैं देख रहा हूं, सबसे पहला ईमेल कहां का है
राजेश? सबसे पहला मेल जो है वो ये बताता है कि बीबीसी की गूंज जो है ना, वो सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश में भी है। और नीरज कोशरिया जो है, जो सिंगापुर से है, ये बीबीसी को लिखते हैं कि ये मेरा पहला मेल है, उम्मीद है अगले कार्यक्रम में शामिल होगा। और देखिए शामिल हो गया।
हो गया बिल्कुल नीरज कोशरिया। मैं, मुझे याद नहीं पड़ता है इनकी पहली कभी चिट्ठी या ईमेल हमने पढ़ा हो, तो स्वागत है। आगे क्या लिखते हैं?
ये लिखते हैं कि मैं लगभग 4 सालों से बीबीसी ऐप के माध्यम से समाचार सुन रहा हूँ, लेकिन 1.5 साल पहले सिंगापुर में रहना शुरू करने के बाद बीबीसी ही मेरे लिए भारतीय समाचार का मुख्य स्रोत बन गया है। देख रहे हैं
आप। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसी चिट्ठियां और ऐसी ईमेल्स हमें बहुत खुशी देती हैं। हमें लगता है कि जो हम कुछ कर रहे हैं उसका अर्थ है। ऐसा नहीं है कि वो हमने कुछ किया, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा।
और ये अर्थ को आगे वो इस तरह से बताते हैं कि मैं, मेरी पत्नी पूनम और 1.5 साल का बेटा निपुण रोज सुबह पिछली रात का दिन भर सुनते हुए चाय नाश्ता करते हैं।
अच्छा, बहुत बहुत आप अपना पूरे परिवार के साथ ये कार्यक्रम सुनते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चिट्ठी कहाँ की है?
अगली चिट्ठी राजेश है गांव कोहरवास से।
मतलब सिंगापुर से आप सीधे गांव कोहरवास, जिला कौन सा है?
जिला नगर मध्य प्रदेश से है। और जितेंद्र शर्मा ने लिखा है ये खत, और वो ये कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैंने इंडिया बोल में हिस्सा लेने की बहुत कोशिश की पर फोन नहीं लगा।
अरे हमें बहुत अफसोस है इस बात का कि हमारे बहुत सारे श्रोता कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो लॉटरी की तरह है, कभी लॉटरी लग जाती है, कभी नहीं लगती है। लेकिन आपने अपना फोन नंबर दिया है, हम कोशिश करेंगे कि अगले किसी कार्यक्रम में आपको शामिल करें।
और एक तारीफ भी उन्होंने की है कि उन्हें रिहान फजल की आवाज
बहुत पसंद है। जी जी जी, रिहान के तो मुरीद हम भी हैं।
और एक अर्जुन सिंह ने ईमेल भेजा है और वो ये लिखते हैं कि
कहां से भेजा है, ये नहीं लिखा है।
नहीं, ये
बस
उन्होंने,
ये मैं अपने तमाम श्रोताओं से बार बार गुजारिश करता हूँ, ईमेल भेजिए लेकिन ये जरूर लिखिए कि आप कहां के रहने वाले हैं साहब, हमको भी तो पता चले। जी क्या लिखते हैं?
और ये लिखते हैं कि आप सरकार विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, सरकार भी गलती करती है पर आप कमियां ढूंढते रहते हैं।
ये जो आपकी आलोचना है, अगर आप खास उदाहरण देकर हमें बताएं ना कि सरकार विरोधी एजेंडा चलाने का जो आपको, जो ये हमें फीडबैक आपने दिया है, चिट्ठी लिखी है, इसका उदाहरण दिया जाना चाहिए। सरकार के या ना तो हम पक्ष में हैं न खिलाफ हैं, न हम न विपक्ष के पक्ष में हैं न विपक्ष के खिलाफ हैं। ये मैं बार बार कहता हूं और ये बात सही है कि मीडिया का रोल है कि वो जो अथॉरिटी में होते हैं लोग, जो फैसला करने वाले लोग होते हैं, उनको आईना दिखाना, ये मीडिया का काम है। अगर ये काम मीडिया नहीं करेगा तो अपना काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगली बार आपकी चिट्ठी में अगर विशेष तौर पर आप उदाहरण देकर बता सकें तो हमें बड़ी खुशी होगी। मैं देख रहा हूं कि सूर्यांशी आप कि नजर एक पोस्टकार्ड पे है और एक डाक से आई चिट्ठी।
बिल्कुल राजेश, ऐसा है कि इतने सारे मेल आया, पोस्टकार्ड आया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से क्या पढूं। लेकिन पोस्टकार्ड जो है पढ़ना बेहद जरूरी है क्योंकि ये काफी पर्सनल भी लगता है। ये राजेश आप अगर खुद पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा समझ आएगा क्योंकि इनकी लिखाई ना बड़ी कमाल की है।
इनकी लिखावट तो बहुत जानी पहचानी है। लिखते हैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव है ये, अध्यक्ष भारतीय रेडियो श्रोता संघ। अर्जुन सिंह भदौरिया भी इनके साथ है, ग्राम कैथनपुरवा, पोस्ट सातनपुरवा, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश, भारत। पूरा पता और अपने मोबाइल नंबर भी लिखे हैं। लिखते हैं कि बीबीसी हिंदी सभा दिनभर में समाचार वाचन पसंद आया, संदीप सोनी जी का सभा संचालन शानदार रहा। अब मैं आपको बता दूं सूर्यांशी की ये हर कार्यक्रम समाप्त होने के अगले सेकंड में ही इनका एसएमएस मैसेज आ जाता है और ये हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा लगातार कम से कम शाम के कार्यक्रम की समीक्षा करते हैं। इस चिट्ठी में इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रमों की तारीफ की है और कहा है कि सब कुछ अच्छा 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 लगा है। मलय नीरव जी को बधाई। तो भाई प्रमोद भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको कार्यक्रम पसंद आए।
और ये जो खत लिखा है इन्होंने पूरे 6 सवाल पूछे हैं। सद्दाम हुसैन दास इनका नाम है,
सद्दाम हुसैन दार्श।
अच्छा। हाँ। वो ये लिखते हैं कि इंडिया बोल सुनकर लगता है कि जैसे बीबीसी अब सब कुछ ठीक ठाक है ये समझाने में लग गया है। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की ओर से उठाए गए सवालों पर हुई बहस में ये चर्चा क्यों नहीं की गई कि जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर क्यों हुए, ऐसी नौबत क्यों आई कि मुख्य न्यायाधीश को जज देख कर केस अलॉट करने पड़े हैं।
जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने गौर से इंडिया बोल सुना और आपकी राय शर्मा थे। उस वक्त जो बहस हो रही होती है उसमें संभव नहीं होता कि हर चीज़ को हर सवाल को उठाया जाए। मोहनलाल शर्मा ने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया था और उसमें आपने सुना ही होगा ज़्यादातर हमारे जो श्रोता हैं उनकी राय को हम जगह देते हैं और वही कोशिश भी थी, लेकिन आपकी जो शिकायत है वो मैं मोहनलाल शर्मा तक पहुँचा दूँगा और अगली बार शायद इस तरह की शिकायत का मौका हम नहीं देंगे। मुझे लगता है कि अब बहुत सारी चिट्ठियां बची हुई हैं, ईमेल्स भी बचे हुए हैं, लेकिन समय नहीं बचा है।
बिल्कुल,
आपकी इजाजत हो तो मैं विदा लूं।
हाँ, मेरे ख्याल से राजेश जी अब जो हमें
तो चलते चलते श्रोताओं आपको हम अपना पता बता देते हैं। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेला जा रहा टेस्ट मैच रोमांचक दौर में पहुंच गया है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के 335 रनों के जवाब में भारत की टीम 307 रनों पर आउट हो गई। थोड़ी देर पहले तक बारिश हो रही थी, अभी अभी खेल शुरू हुआ है। कार्यक्रम में शामिल करते हैं सूर्यांशी पांडे को, बताइए क्या है ताज़ा स्थिति।
बिल्कुल, अगर बात की जाए सेंचुरियन में हो रहे मुकाबले की तो मैं डाल डाल तू पात पात यही हो रहा है। साउथ अफ्रीका में पहले तो इंडिया जो है वो काफ़ी जिसे कहते हैं मजबूत नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि ओपनर्स की अगर बात करें तो मुरली विजय ने पहले इनिंग्स में सिर्फ 46 रन यानी कि 46 रन उन्होंने बनाए और केएल राहुल जो है केवल 10 रन बनाकर आउट हो गए। और अगर चेतेश्वर पुजारा की बात करें तो वो तो शून्य पर ही आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली ने जब कमान संभाली तो लगा कि शायद डोर जो है वो सही और मजबूती से पकड़ी गई है। 153 रन उन्होंने बनाए और इंडिया को कम से कम 307 तक तो पहुँचाने में वो कामयाब रहे। ये पहली पारी का हाल है, लेकिन ऑल आउट हो गई पूरी की पूरी टीम, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के बॉलर्स ने, तेज़ गेंदबाजों ने कमाल की बॉलिंग की। और अगर बात जाए साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी की जो कि अब चल रही है, 74 रन पर साउथ अफ्रीका है और 2 विकेट लेने के बाद लग रहा था कि दोबारा भारत जो है वो हावी हो रही है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से माकरम को 1 ही रन पर आउट कर दिया और हाशिम अमला को 1 रन पर आउट कर दिया, ये काबिले तारीफ था। लेकिन फिर ए बी डिविलियर्स और डीन एल्गर की जो पार्टनरशिप जिसे कह सकते हैं साझेदारी है वो इतनी कमाल की चल रही है कि अब फिर से साउथ अफ्रीका वापस आ गई है
74 पर 2 साउथ अफ्रीका का। और चलते चलते थोड़ा जिक्र हो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का भी।
बिल्कुल, आज 15 जनवरी है और आज ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हो गई है। तो ऐसे में बात की जाए बड़े जो खिलाड़ी हैं उसमें राफेल नडाल जो है वो पहले राउंड को पार कर चुके हैं और काइल एडमन भी, वो भी पार कर चुके हैं पहला राउंड, लेकिन वीनस विलियम्स जो हैं वो बाहर निकल चुकी हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यांशी आपका। सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बाद आज के बीच लंबी बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने रक्षा और चरमपंथ पर रोक लगाने समेत कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए हैं। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि भारतीय सेना की कार्रवाई में उसके 4 जवानों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के मुताबिक इस दौरान भारत के भी 3 सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन भारत ने इस दावे को गलत बताया है। उत्तर पूर्वी सीरिया में नए सैन्य बल गठित करने के अमरीकी प्रयासों की कई देशों ने आलोचना की है। चीन के पूर्वी तट पर रविवार को ईरान से आ रहे टैंकर के पलटने से लगी आग बुझा ली गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलकराज भाटिया। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।